भाग आईना उल्टा दिखे, जब बात गरिमा से नहीं अहंकार से हो। रात 4:45 बजे, हवेली का ऊपरी कमरा। रैना मुड़ी थी, दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसके कदम अब भी भारी थे, लेकिन इरादा साफ था, वो इस कमरे से निकलना चाहती थी। और तभी एक झटका, अखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक सधी हुई पकड़, न जोर से न नरमी से, लेकिन इतनी ठोस कि रैना को रुकना पड़ा। कहीं जा रही हो? अखिल की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक आग झलक रही थी जो भीतर धधक रही थी। रैना ने तुरंत उसकी तरफ देखा, उसकी भौहें चढ़ गईं। हाथ छोड़ो, उसने ठंडी आवाज में कहा। पहले जवाब दो, किससे भाग रही हो? अखिल अब उसे अपनी तरफ खींच चुका था। एक तेज झटके से रैना का शरीर उससे टकरा गया। वो पूरी तरह चौंकी। क्या बेहूदगी है ये अखिल? बेहूदगी? अब तक जो चल रहा था पार्टी में और उस कमरे में, वो क्या था? रैना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब तक दरवाजा भी बंद हो चुका था। कमरा बंद, सांसें तेज और बीच में घुलता हुआ कोई अज्ञात स्पर्श। तुम्हें हक नहीं है मुझसे इस तरह बात करने का, उसने गुस्से से कहा। और तुम्हें हक नहीं था खुद को इस तरह गिराने का, अखिल का जवाब आया। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट थी जो खुद से भी ज्यादा रैना से थी। रैना की सांसें तेज हो गईं, उसका चेहरा सुर्ख था, आंखें नफरत से जलती हुईं। तुम मेरी गरिमा पर सवाल नहीं उठा सकते। मैंने कुछ कहा क्या? मैं तो बस देख रहा हूं अब की रैना कितनी तेज हो चुकी है। हर कदम फूंक फूंक कर नहीं, आग में कूदने जैसी जिद में उठता है। और तुम अब भी वही हो जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन खुद से भी हारा हुआ है। दोनों की आंखें अब टकरा रही थीं, और अचानक वो टकराव, वही दूरी, वही सांसें नजदीकियों में बदलने लगीं। रैना अब भी उससे दूर हटना चाह रही थी, लेकिन उसकी पीठ दीवार से लग चुकी थी। अखिल उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मुझे मत छुओ, उसने फिर कहा। मैंने चाहा भी कब? अखिल की आवाज अब सर्द थी, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में रैना के कंधे तक पहुंच चुकी थीं। रैना की सांसें डगमगाईं, उसने हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन फिर वहीं ठहर गईं। शब्द अब नहीं बोले जा रहे थे, सिर्फ निगाहें थीं, भरी हुई बोझिल और शायद जरा सी बेचैन भी। अखिल ने उसके बालों की एक लट को पीछे किया, तेजी से नहीं लेकिन अधिकार में। रैना कांप उठी, लेकिन कुछ नहीं बोली। तुम हमेशा सोचती रही कि तुम जानती हो मुझे, अखिल ने कहा। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रही हो, लेकिन सच ये है तुमने कभी जाना ही नहीं। रैना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जानने लायक कुछ था नहीं। अखिल की सांसें भारी हुई और फिर उसके होंठ रैना के करीब आए। ये चूमन नहीं था, ये टकराव था, आरोपों की आग से भरा एक असहमति भरा चूमन जिसमें कोई अनुराग नहीं था। रैना ने एक पल के लिए विरोध किया, उसके हाथ अखिल की छाती को ठेलते रहे, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां थमी उसका शरीर कांपने लगा, शायद थकान से, शायद बेचैनी से। कोई प्रेम नहीं था वहां, बस देह की भाषा में दर्ज हो रही कोई अनलिखी कहानी थी। अखिल ने उसके टॉप खींचा, झटके से नहीं बल्कि ऐसे जैसे वो हर परत को हटाकर अंदर के सच तक पहुंचना चाहता हो। रैना अब भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें डर नहीं, चुनौती थी। अखिल ने उसका स्कर्ट एक ओर सरकाया, रैना ने हाथ रोका लेकिन आंखें नहीं झुकाईं। मत सोचो कि मैं तुम्हारी हो रही हूं। मैं सोच भी नहीं रहा, अखिल का उत्तर तुरंत आया। उसकी उंगलियां अब रैना की पीठ पर थीं, उनकी सांसें आपस में उलझने लगीं, धीरे धीरे कपड़े सरकने लगे, उतारे नहीं गए, जैसे खुद ही जवाब मांग रहे हों। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, बाहर रात अपनी ठंडी चादर में लिपटी थी और अंदर एक गर्मी थी, अधिकार की, द्वेष की और एक अधूरी अस्मिता की। बिस्तर अब कोई विश्राम नहीं, युद्धभूमि बन चुका था। उनकी देहें उलझी, शब्द अब भी गायब थे। रैना की पीठ बिस्तर से लगी, अखिल उसके ऊपर झुका हुआ, स्पर्श दिखे थे, ना कोमलता थी ना मोह, बस एक जुनूनी भटकाव था। फर्श पर चूड़ियां लुढ़क गईं, जमीन पर किसी कमीज की सिलवटें गिर गईं। उनकी सांसों की ध्वनि कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, धीमी नहीं, रुक रुक कर टूटती हुई। ये प्रेम नहीं था, ये एक अनकहे कुछ खास एहसास की सबसे भटकी हुई अभिव्यक्ति थी। बिस्तर की चादर खींच गई थी, सिरहाने पर तकिए का कोना मुड़ चुका था, एक मोमबत्ती की लौ बुझ चुकी थी और अब कमरे में सिर्फ चुप्पी थी। वो चुप्पी जिसमें कई प्रश्न थे लेकिन कोई उत्तर नहीं।